इसलिए कोई कहे उसके बात नहीं सुनना चाहिए, वो लोग कभी के चरण है। जीव गोस्वामी ने कहां कहां जीव गोस्वामी के बात को उलाद करके उन्हीं का बात ले करके और उसका ने एक दूसरा शब्द लगा दिया और उसका अर्थ ही बदल दिया। हमने देखा इसका विचार एक देखा सुंदरानंद जी का कोड़िया सिंह ठाकुर ने अचिंत भेदा भेद तो उसमें लिखा कि जी गोस्वामी ने लिखा है जी गोस्वामी ने ऐसा लिखा है कि हम लोग अद्वैतवादी हैं कि क्या ऐसा ही है क्या। हमने जी गोस्वामी का तत्व संदर्भ लिया ओ इसमें जो मध्य और उनके शिष्य परंपरा के जितने भी विद्वान हैं कौन नाम उसमें दिया है उनके विद्वानों का परंपरा से उनके विचारों को हम ग्रहण करके वृद्ध वैष्णव और उनमें भी मध्वाचार्य और मध्वाचार्य के शिष्य परंपरा में वो है ना जयतीर्थ है विजयध्वज है और सब है। इन सब विचारों को विचार लेकर के हमने ये सब प्रबंध को लिखा है। उनमें उन्होंने कहा जैसे इनके विचारों को हमने नहीं लिखा है ऐसा लिखा है और लगा दिया उसने इतना भारी खुलता अब उसको एकदम उल्टा। मैंने देखा कि तारी ये तो महाशय का ऐसा आदमी है गुरु जी कहते हैं वो ठीक है इसलिए उन्होंने पुस्तकें सब छापी वृंदावन में संस्कृत में और उसका पाठ भेज करके एकदम लट लट करके किस लिए केवल इसलिए कि मध्वाचार्य जी के हम समुदाय महाप्रभु जी स्वयं संप्रदाय को सहस्त्र संप्रदाय के आचार्य हैं। गुरु जी ने कहा गया तो यदि महाप्रभु जी स्वयं आचार्य हैं तो एक आचार्य हैं आचार्य के रूप में आए। भगवान का काम आचार्य गिरी करना नहीं है संप्रदाय बनाना नहीं है। यदि ऐसे ही बात होता तो नारायण संप्रदाय होता कृष्ण संप्रदाय होता रुद्र संप्रदाय होता ऐसा होता राम संप्रदाय होता ऐसा नहीं होकर के वैष्णव आचार्यों के नाम पर उनके नाम जैसे निम्बाश संप्रदाय मध्य संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय लक्ष्मी संप्रदाय ये उपासना भी दृष्टि से इन पर इनके नाम लिखे गए। इसलिए गुरु महाराज उस समय यदि नहीं आते ना तो हमारा संप्रदाय न जाने उड़ा देते न जाने क्या कर देते। इसलिए वहां पर ये सब गुरु महाराज जी की विशेषता ये दिखाई गोपकिशोर दास बाबा जी महाराज परम निरपेक्ष वैष्णव थे अपने समय के। उनका चित्र है आंख से नहीं देखते थे कीचड़ जमुना का और आधा कुंड का जमुना का मछली खा लेते किसी से कुछ नहीं लेते निरपेक्ष वैष्णव। हम लोग तो आजकल मथुरा वृंदावन में भी जमीन खरीद रहे हैं और नौ दिन और मठ अपना कर रहे हैं। ये किसका मठ है हम लोगों का। एक आदमी ने उनसे कहा बाबा जी महाराज आप कृपा कीजिए नवद्वीप में हम एक कट्ठा जमीन ले करके और यहीं पर हम एक छोटा सा भजन कुटी बना करके भजन कर एकदम बिगड़ गए। तुम नवद्वीप की एक कट्ठा जमीन ले लेगा विश्व ब्रह्मांड को बेच देने पर भी अनंत कोटि वृंदावन की और नवद्वीप की एक भूली कना का भी कोई मूल्य नहीं दे सकता और उसको तुम खरीद करके भजन कुटी अपना बनाएगा। कृष्ण की भूमि में रहने महाप्रभु जी की भूमि में तुम ये इधर उधर पेड़ों के नीचे रह करके भजन नहीं करेगा तुम भोजन ये सब संग्रह। वो किसी से मिलते नहीं थे भी कई लोगों से बहुत कुछ बाबा जी महाराज महाराजा जी महाराज जी आप चलिए वहां पर विश्व वैष्णव सम्मेलनी हो रहा है कहिए तुम हमारे पास में आ जाओ यहाँ भजन करो हमारे यहाँ तुम्हारी लंगोटी दे देंगे और खाने पीने का तुम्हारा जीवन भर का हम भार ले लेते हैं तुम भजन करो तो कि इसलिए वैष्णव सम्मेलन नहीं करेगा, नहीं ले जाते। ऐसे बाबा जी महाराज जी पैखाना भी प्रसन्न कर रहे हैं वनस्पत भजन कुटी सही की। हम लोग अब अनुभव करते, पहले तो अनुभव नहीं करते थे। कोई विषय आता है कि महाराज जी लड़के की शादी नहीं हो रही, महाराज जी लड़का पास हो जाए, लड़की का बढ़ ही नहीं मिल रहा है 4 वर्ष से, हमारी पत्नी बहुत अस्वस्थ है, थोड़ा सा चरणामृत दे दीजिए ठीक हो जाए। हमको भगवत भक्ति हो जाए इसके लिए कोई नहीं आता, बहुत कम। हम तो कहते हैं अब तो वृद्धावस्था ही रिटायरमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ छोड़ करके यहाँ पर भजन करो, कोई भी असुविधा नहीं होगी, बाल भी सफेद हो गए, लड़के गाली देते हैं चाहते नहीं, तो भजन करते। अच्छा कल से भजन करूंगा, वो कल से जीवन नहीं, तो वही उनके पास में आते। इसलिए उन्होंने सोचा कि पैखाना में रहना चाहे पखाना का संग करेंगे, वो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट नहीं करेगा, किंतु ये लोग हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देंगे। अच्छे अच्छे मालपुआ ले आएंगे, राबड़ी ले आएंगे, परमान्न ले आएंगे, खीर ले आएंगे, खिलाएंगे, और वो कहाँ से लाएंगे? अपने एनर्जी से कमाई की हुई पैसे का कहीं लेंगे, तो उनकी एनर्जी कैसी है और बुद्धि कैसे है? कोई बुद्धि में आ जाएगी, इसलिए इनका संग नहीं करने। इसलिए वो गंगा के किनारे भजन कुटी छोड़ करके और एक शक्ति जहाँ पर लोग रहते थे उसी में जाकर के कबाड़ बंद करके उसी में भजन कर रहे, 8-10 दिन क्या 15 दिन तक नहीं निकले। लोग पूछे बाबा जी कहाँ गए, बाबा जी कहाँ गए? तो वो बेसिक मैजिस्ट्रेट को पता लगा, जब मैं दर्शनकारी में गया था तो बाबा जी हरे कृष्ण 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 करते, बड़े जोर से हरि नाम करते थे, धीरे धीरे नहीं, मन में जैसे करते हैं ऐसे नहीं। मन गंगा तो कठौती में गंगा है, मन में ही भक्ति करनी चाहिए, दिखलाने की क्या जरूरत, भगवान क्या बह रहे हैं ये नहीं सुने, कितने तरह के तर्क वितर्क लोग करते हैं, किंतु वो जोर से नाम करते। यहाँ से 1 माइल का दूर तक आदमी गंगा उस पार का दृश्य भी सुन ले, तो जमीन में जाकर के चेयरमैन से कहा, चेयरमैन ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहा, वो सुपरिंटेंडेंट और पुलिस को लेकर के और वहां से डिप्टी कलेक्टर या मजिस्ट्रेट, बाबा जी महाराज कबाड़ खोलिए, आपको हम भजन कुटी दूसरी जगह बना देते हैं गंगा के किनारे अच्छी तरह से, आप वहां पर भजन कीजिए। हम तो सर एक बार भेंट कर लीजिए, आपको क्या सुविधा है यहाँ पर बैठे, वो क्या समझिए क्या सुविधा है, विषय लोगों का संग करने की अपेक्षा पैखाना के पास न रहना, बल्कि वो ठीक है क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट नहीं है, इसलिए वो बैठे हैं। किंतु ये उनको क्या समझे, बहुत जब जिद किया तो मैं कहा मेरी तबीयत बहुत, मैं कबाड़ नहीं खोलता, ऐसे मानो उठने की भी शक्ति नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुपरिंटेंडेंट हम लोग कहते क्या करते, हम लोग तो थर लाते हैं, जल्दी से दौड़ करके वहीं से जाकर के लिया और खूब खिलाते खिलाते बैठाते आदर करते। उन्होंने उनसे बात नहीं की, 1 घंटा तक रगड़ते रहे, कुछ भी नहीं जब सुने तो अंत में लोग चले। ऐसे महात्मा के पास में गुरु महाराज जी जब प्रभुपाद के शिष्य हुए तो गुरु महाराज जी को आदेश दिया कि जाओ खोटू सो दास राज महाराज क्या दर्शन कराओ, तो गए तो वो पिसी माँ थी और नेमी महाराज थे, उस समय में संन्यास ने लिया था, उनका नाम गौर गोविंद बहुत बड़ा था, बड़े विद्वान संस्कृत के थे, संस्कृत में अनर्गल बोलते थे, तो वो बड़े बड़े विद्वत सभा में उनको प्रभुपाद भेजते थे, तो वो इन सब लोगों के साथ में गए थे। तो इन लोगों ने कहा प्रभु महाराज जी आप जरा, बाबा जी महाराज जरा दरवाजे खोलिए हम दर्शन के लिए आए, तो कुछ नहीं हुआ, 5-7 बार बोला तो कहिए हम तबीयत खराब है मैं नहीं हूँ। तो गुरु जी ने कहा हमारे सरस्वती ठाकुर जी ने हमको आपके दर्शन के लिए भेजा है। अच्छा अच्छा अच्छा, उठ करके खड़े हो गए और सरस्वती जी भेज गए, बस दरवाजा खोल दिया और गए। गुरु महाराज जी ने प्रणाम किया और तुम्हारी समस्त जितनी आपत्ति है जीवन की वो समस्त हम मैं ग्रहण करता हूँ, तुम भगवत भजन करो। बस ऐसे ऐसे बात। गुरु महाराज जी रोते थे इस महापुरुष के आशीर्वाद से हमारे ऊपर में जीवन में भगवत भक्ति प्रचार में बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियां आई, आसाम में हम लोगों के साथ नहीं आई, चुड़चुड़ा में मैं था वहां आई, कलकत्ते में आई। विशेष करके मेरे आने के बाद में ही चुड़चुड़ा में बहुत आसाम में इधर उधर में जहां भी उनके साथ में गया देखा कि कैसी कैसी विपत्तियां आ गई, साधारण आदमी सच नहीं था। वो सब कहते थे रोते थे प्रभु ये गौर कुशोदास महाराज की कृपा से और भी प्रभु पाद की कृपा से उन्होंने कृपा की, नहीं तो हमको क्या जानते हैं वो क्या कृपा। झट दरवाजा खोल करके उन पर आशीर्वाद दिया, ये लोग प्रसन्न होकर के फिर परिचय उन्होंने कहा कि तो हम इसीलिए निर्भीक हैं, सत्यम ब्रुआ प्रियम ब्रुआ माँ ब्रुआ असत्यम व प्रियम, ये जगत की नीति है। क्या जगत की नीति है? सच बोलो किंतु प्रिय सत्य बोलो, जो प्रिय सत्य है किंतु कभी भी असत्य जो है अप्रिय सत्य है वो मत कहो। गुरु महाराज जी का विचार करते थे कि हमारा ऐसा विचार नहीं, हमारे शास्त्रों का विचार नहीं है। सत्यम ब्रुआत अप्रियम सत्यम ब्रुआत, यदि अप्रिय भी है तो बोलो। क्यों? साधु अपने वचन रूपी कुठार से लोगों के हृदय के बंधनों को और बुराइयों को छेदन कर देता है। तो इस लोग क्या है, संत एवा सच्छिन्दन्ति मनोव्यासंग उपसिद्धि, अपने वचनों से असत पुरुषों के हृदय के जितने भी ग्रंथियां हैं उनको काट देते हैं। हम लोग प्रिय सुनने के लिए आदि हैं, हमारे कोई दुर्गुण बतलाएगा तो नहीं सुनेंगे, झगड़ा लड़ाई करेंगे, हम जो चाहते हैं वही गुरु जी कहें। गुरु जी कहते नहीं तब तुम गुरु बन करके रहो, गुरु कृपा करने की क्या जरूरत है। तुम्हारे अंदर में जो छिद्र हैं दोष हैं इन सबको वो कहेंगे। हम भी ऐसा कभी कभी कह देते हैं, कभी कभी किसी को बुरा मत मानना कभी आप लोग, संत पुरुषों का यही, हम लोग उनके साथ रहे हैं ना इसलिए थोड़ी थोड़ी छीट हम लोगों को भी आई। हम भी कोई बात होता है तो बाजार में ही झुझोरा मैंने बजा करके फोड़ देते हैं, कहिए ये दोष है, उसे घबराना नहीं चाहिए। इसलिए गुरु जी कहते हैं ये सब ही असत्य है, जगत क्या है नित्य सत्य नहीं है, नश्वर है। हम लोगों की विषय वास्तव में रुचि है, संत क्या कहते हैं, जब तक इनमें रुचि रहेगी तब तक भगवान की तरफ में हम नहीं जा सकते हैं, एक गंध भी रहेगी तो नहीं, इसलिए इन सबको छेदन करके भगवान के तरफ में चलना चाहिए। बहुत से लोग झगड़ा करते हैं, गृहस्थ बड़ा है, कुछ लोग कहते हैं त्याग बड़ा है, संन्यास धर्म बड़ा है, झगड़ते हैं। साधु संत पुरुष कहते हैं भाई झगड़ने की जरूरत नहीं है, अपने अपने स्थान पर सभी बड़े हैं, भगवान से प्रीति करने चाहिए, भगवान से प्रीति रखना चाहिए, जो कुछ करो भगवान के लिए करो, ये तो करना पड़ेगा ना, अन्याभिलाषिता दूर करना पड़ेगा और ज्ञान कर्मादि दूर करना पड़ेगा। अच्छा, यदि तुमको संसार की वासना ही नहीं है किसी को और किसी को संसार की वासना है, दोनों में कौन से है, कौन से होगा भाई? वासना नहीं है वो श्रेष्ठ होगा। तुम गृहस्थ में क्यों गया क्यों? तुम सब प्रकार से बचपन से लेकर के भगवान का ही भजन करो, उन्हीं के लिए करो, कृष्ण के लिए अखिल वृत्तियों को चेष्टा परायण और कृष्ण के लिए अखिल भोग का त्याग करो। जब भोग की कोई बात ही नहीं रही, संसारी कोई आसक्ति ही नहीं रही, संसार झूठा स्वप्न है और दुख का कारण है, तुम क्यों गया? इसलिए लोग झगड़ा करते हैं, किंतु झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। श्रेष्ठ तो जरूर वो है जो सब कुछ त्याग करके भगवान के लिए सेवा करता है, किंतु सबके लिए संभव पर नहीं है। इसलिए जथा स्थान में रह करके भगवान का भजन करो। स्थाने स्थिता, किंतु ऐसा जब भी कोई करता है सुखदेव और नारद की भांति, या घर में सिवाक पंडित की भांति, लड़का मर गया कीर्तन हो रहा है उसको बंद नहीं करने दिया, तो गृहस्थ वैष्णव भी हो भक्त भी हो तो ऐसा हो। जैसे कि अर्जुन भीम नकुल सहदेव लड़के मारे गए, सब आंख में आंसू नहीं आए, द्रौपदी भी रो रही है, किस लिए? कृष्ण के लिए। ऐसा होना चाहिए, त्यागी हो तो ऐसा। इन वचनों के द्वारा गुरु जी कहते हैं सत्यम ब्रियाय, यदि वो अप्रिय है ताले क्या करो, अप्रिय भी है तो सत्य ही बोलो, प्रिय भी है तो सत्य बोलो, क्योंकि ये कर्तव्य है। आग नहीं तो असत्य यदि अप्रिय है, सत्य यदि अप्रिय है तो मत कहो, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसी को पूज्यपाद भानु महाराज जी ने भी अब इसमें संग्रह किया है। ऐसा इसलिए साधु गुरु वैष्णव के आत्म कल्याण जनक कटु वाक्य और समालोचना भजन के विषय में बाधा विघ्न को दूर करती है, इसलिए इनको श्रवण करने का अभ्यास रखना चाहिए, नहीं घबराना चाहिए, इसी से ही हमारा कल्याण होगा। ये भजन की परिभाषा। हमारे रूप गोस्वामी ने जीव का गोस्वामी का दोष नहीं होते हुए भी किस लिए इसलिए किया, उनको शोधन करने, शोधन करने की जरूरत नहीं थी, वो तो ठीक है, किंतु जगत की शिक्षा के लिए किया और जीव गोस्वामी ने उसे ग्रहण कर लिया। इसी तरह से चलना चाहिए। गुरु जी की अद्भुत अद्भुत युक्तियां होती थी, इतना बजा गुरु जी की अद्भुत अद्भुत युक्तियां हमने कभी नहीं सुनी। उन्होंने कहा भागवत इत्यादि ग्रंथों में देखा जाता है ब्रह्म परमात्मा और भगवान, ये तीन है, तो जब इन तीनों में ब्रह्म ही श्रेष्ठ है, क्योंकि पहले ब्रह्म शब्द आया है, इसके बाद में परमात्मा आया, इसके बाद में, इसलिए श्रेष्ठ वस्तु का नाम हमने पहले लिया, किसका? और इसके बाद में, और इसके बाद में भगवान लिया, इसलिए भागवत में ब्रह्म को ही स्वीकार किया। गुरु जी कहते हैं तुम्हारी असो पर पत्थर पड़ा है, खास पत्थर तुम नहीं समझता, कैसे? यदि ब्रह्म ही शेष है तो पर ब्रह्म क्यों शास्त्रों में लिखा? पर ब्रह्म परम भगवान इत्यादि कृष्ण के लिए गीता में भी लिखा और ये भी बतलाया ब्रह्मण प्रतिष्ठा, हम कृष्ण कहते हैं ब्रह्म का भी मैं प्रतिष्ठा हूं, और सबसे बड़ी बात पर ब्रह्म क्यों लिखा? तथा ब्रह्म शरीर श्रेष्ठ कोई वस्तु है, आत्मा शरीर श्रेष्ठ है कौन? परमात्मा, इसलिए आत्मा श्रेष्ठ तत्व नहीं है, आत्मा को भी वो लोग ब्रह्म कहते हैं, तो परमात्मा क्यों लिखा गया? किंतु भगवान के पहले कहीं भी परम नहीं है, इसलिए भगवत तत्व ही सबसे ब्रह्म और परमात्मा, उनके एक आभास का नाम, उनके अंग की ज्योति अर्थात ज्ञान विकृत ज्ञान का प्रतिफलन है, चिद अंश का प्रतिफलन तत्व, ये ब्रह्म है, निर्विकार निर्गुण निरंजन। और परमात्मा जो साक्षी के रूप में प्रत्येक जीवों के अंदर में भगवान के अंश के कला के विकला ये फिर देखाई, ये है परमात्मा। और कृष्ण कौन है? इन सब के अंशी के अंशी के अंशी के भी ऊपर चले गए, सर्व कारण कारणम वो कृष्ण ही, ये भगवान। भगवान का भी दो रूप बतलाया, एक भगवान एक स्वयं भगवान नारायण राम नृसिंह कल्कि वामन, ये क्षीरोदशाई तक ये सभी भगवान हैं, किंतु कृष्ण ही स्वयं एक ही चांद कला कृष्णस्तु, ये स्वयं भगवान ही पर ब्रह्म है और परम परमात्मा है और वही मूल। ये गुरु महाराज जी के शब्द। गुरु महाराज जी शास्त्र का प्रमाण बहुत कम लेते थे और श्लोक बहुत याद नहीं रखते, युक्ति तर्क विचार ये सब लेकर के। नवद्वीप में ब्रह्मचारियों ने, मैं तो मथुरा में था, हमने सुना कि विक्रम महाराज जी और सब जितने थे वो सब भवन महाराज जी सब लोगों ने कहा, जी हम लोग वेदांत की व्याख्या कार्तिक महीने में एक महीना आप कीजिए, हम लोग सुने। तो गुरु महाराज ने वेदांत का आरंभ किया। नवद्वीप का एक महा ब्रह्मवादी बहुत बड़ा पंडित वो सुनने के लिए आने लगा, तो वो सब सुनता था। तो जबकि आनंद में वो कोई पाद है, वो आनंदमय अधिकरण जब आया, आनंदमय अभ्यास, तो उसी में वो कथा से ब्रह्म जो है निर्विकार निर्निरंजन वो आनंदमय है। गुरु जी ने कहा कि उस ब्रह्म के लिए नहीं कह रहे, ये कृष्ण ही जो पर ब्रह्म है स्वयं भगवान है उनके लिए ये आनंदमय है। तुम्हारे जो ब्रह्म है वो कैसे हैं? निर्विकार निर्विशेष निरंजन अकाम, माने जितना और लगाया जा सकता वो सब है, इसलिए तुम्हारे ब्रह्म आनंद में नहीं है। वो कहते ब्रह्म हमारे आनंद में है। अच्छा तथ्य सुनो, मैं कहता तुम्हारे ब्रह्म जो है वो पैखाना बीतामय है, पैखाना में। तो वो किसी कारण आप ऐसे कहो, आप इतने बड़े विद्वान हो करके कहें, तो मैं क्या कहूं? तुम यदि पैखाना में मिलकर के पैखाना हो जाएगा तो उसका दुर्गंध तुमको नहीं मिलेगा, इसलिए तुम ब्रह्ममय हो गया। तुम आनंदमय किस लिए बनना चाहता है? इसलिए कि उसमें आनंद है। तो जिसमें कोई आनंद ही नहीं है, या कोई चीनी है, चीनी चीटी खाने गई, मधु पीने के लिए गई और वो उसमें लिपट गई मधु में, और लिपट करके क्या हो गई? मधु बन गई। खूब मधु तो बनी नहीं, क्या हुआ? उसके अंग पट्टन में टूट फूट करके वो घुल मिल गए थी उसमें मधु में। तो आनंद भोग कर रही है ना, ये बहुत मीठी मधु है। और यदि कोई पैखाने में चीटी चली जाए और वो चीटी पैखाने में सड़गल जाए उसके अंग पट्टन, तो वो चीटी भी आनंद उसका लेगी ना, दुर्गंध उसको आएगा। हम लोग के यहाँ प्याज लहसुन पास्ता कभी कभी बनाते हैं, दुर्गंध के मारे रहा नहीं जाए। उनको लगती है जो खाते पीते हैं उनको बहुत ही अच्छा लगता है। एक मछली बचने वाली थी, टोकरी लेकर के मछली बेचने के लिए शहर में जाती, तो एक दिन वो बेच करके लौट रही है, बड़ी थकी हुई है, बहुत थक गई। तो वो बगीचे में, बगीचा सुंदर था, उसमें फूल खिले हुए थे, बेली चमेली ये सब फूल, और उसका सुगंध आ रहा था। तो उसने सोने की बहुत चेष्टा की किंतु नींद नहीं आई। तो उसने क्या किया, सो करके और उस टोकरी को जिसमें मछली का गंध आ रहा था उसको अपने मुख पर ऐसे उठा दिया और पानी का छीटा दे दिया और उसको खुशबू आने लगी। बस तो भैया, तो यदि कोई पैखाना मिल करके पैखाने हो तो सब दुर्गंध आएगा थोड़े, इसलिए तुम्हारा ब्रह्म शक्ति में। तुम प्रमाण करो जैसे वो आनंद में है, कुछ तरह से नहीं प्रमाण कर सका। अंत में कहा जैसे क्या
महादेव
नहीं, अच्छा खैर बंगला का मैंने किसी तरह से वो प्रमाणित नहीं कर सका। अंत में हाथ झुंझुला करके और वहां से उठ करके इत्यादि का कोई भी श्लोक प्रमाण इत्यादि बहुत कम बोलते थे। भाषण भी ऐसे देते थे। भक्ति के संबंध में एक समय में एक आदमी ने चिट्ठी लिखा गुरु महाराज जी का शिष्य आसाम से आसाम प्रदेश से चिट्ठी लिखा, गुरु जी हमको जाति से इन लोगों ने बाहर कर दिया है, मैंने हरिनाम लिया और यज्ञोपवीत धारण किया। कहते हैं कि अरे तुम यज्ञोपवीत कैसे लिया और तुम हरिनाम कैसे करेगा, तुम गायत्री का मंत्र उच्चारण नहीं कर सकता है, तुम हमारा समाज का विरोधी काम किया है, तुम हमारा हुक्का नहीं पीता है, हम लोग के साथ में बीड़ी नहीं पीता, हमारे साथ में बोतल नहीं पीता है, इसलिए या तो तुम हमारे साथ में रह करके सब काम करो, हमारे साथ में हुक्का पियो बीड़ी पियो और हम जैसा करते हैं वैसा करो, और नहीं तो तुमको समाज से बहिष्कृत कर दो। उनका कुआं बंद कर दिया, विवाह शादी बंद कर दिया, नाई धोबी सब बंद कर दिया। अब तो नाई धोबी का सब अपने आप कर ले, ये सब हम लोग भी नाई का काम कर रहे, नाई की जरूरत नहीं, धोबी का काम भी अब पहले ये सब था, प्रथाएं थी, अब नाई भी नहीं आएगी तो क्या होगा, क्या जरूरत है, दो पैसे में किसी को रख लेने नौकर, नाई का काम कर देती है, चौक पुराना है, हम अपनी बेटियां हम अपने बहुए चौक फूल लेंगे, तो पुणे की जरूरत ही नहीं है, ये सब पुरानी भगवत लाइन थी, इसकी जरूरत क्या है, बिना उसके विवाह नहीं हो जाएगा, एक फूल की माला डाल दी बस हो गया, रजिस्ट्री विवाह करा लिया, क्या नाइन की धोबी की ये सब क्या जरूरत है, पुरोहित की क्या जरूरत है, तो वैसे उनका बंद कर दिया। गुरु जी ने कहा, उनको पत्र लिखा, बहुत अच्छा हुआ, कुसंग अपने आप तुमको छोड़ दिया, अब इसे अभी क्या, तुम छोड़ नहीं सकते थे और कुसंग ने तुमको छोड़ दिया, बहुत अच्छा हुआ, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, शक्ति देता हूँ, तुम कोई चिंता मत करो, तुम भगवत भजन करो ठाट के साथ, इसके बाद में जो आएगा हम देखेंगे और सप्ताह में तुम वहां पर चलेंगे हम लोगों के साथ में, करीब करीब हम लोग 4-5-8-10 आदमी हम लोग सन्यासी थे और ब्रह्मचारी, कुल 20-25 ब्रह्मचारी और बड़े बड़े गांव के अच्छे अच्छे सब व्यक्ति, वो भी 50-100 आदमी लेकर के गुरु महाराज जी प्रचार करते थे इस गांव से उस गांव, और वहां बड़ी बड़ी सभाएं होती। एक बार गुरु जी ने कहा, जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं, मदिरा खाते हैं, मांस मछली खाते हैं, सदाचार पूर्वक नहीं रखते, उनका मुख नाली है, गंदी की नाली जिसमें ये सभी चीजें बहती है, बस बहुत पत्थर और ये सब चलाने लगे लोग, और उन्होंने उल्टा सुलटा प्रश्न करना आरंभ किया, कहिए तुम्हारे पत्थरों और ईंट से हम लोग डरने वाले हैं, अरे अधिक से अधिक 10-30 ईंटें लगेंगी या तो मर जाए, किंतु हम लोग समाज के लिए आए कल्याण करने के लिए, आप नहीं सुनेंगे और 10 आदमी सुनेंगे, 20 आदमी, 50, 1000 आदमी सुनेंगे, यहाँ पर 1000 आदमी आए, इनका भविष्य बिगाड़ने के लिए हम नहीं। अंत में गांव वाले सब गुरु महाराज जी के तरफ से तैयार हो गए और ये लोग भी पत्थर पत्थर लेकर के कहा, जैसे यदि खबरदार यदि चलाया तुमको कोई प्रश्न पूछना है तो पूछो। तो उन्होंने प्रश्न कहा, ये प्रश्न का उत्तर दीजिए, चैतन्य महाप्रभु भगवान नहीं है, आप प्रमाणित कीजिए भगवान। बरसाती साथ में श्री विक्रम महाराज जी थे, उनके पास में नोट डायरी था, गुरु जी ने कहा जी पढ़ो, बस एकदम मैंने आरंभ कर दिया, सब थरारी एकदम लग गई, इस तरह से प्रचार किया हमके साथ। मेदिनीपुर में भी ऐसे ही 1000 प्रश्न करते हैं और 1000 प्रश्न का उत्तर देते हैं, इस तरह से ये महापुरुष। अभी मैं सोचा था कि बहुत कुछ कहूंगा, ये कल कहेंगे, किंतु गुरु महाराज जी की महिमा नहीं कह सका, 2-1-4-5-5 उनकी महिमा अजस्त महिमा है, वो यदि नहीं आते तो यहाँ पर देखो जी एक आदमी भी हम लोग नहीं बैठते, मथुरा भर में या कहां ब्रिज में कहां कहां विशेष प्रचार होता है, वो नहीं रहते तो स्वामी जी को संन्यास कौन देता है। इस तरह से देखो ये महापुरुष एक महापुरुष विश्व ब्रह्मांड को उठा, देखो उनके प्रति दृढ़ श्रद्धा रखना, उनके उपदेशों को पालन करना। भजन से किसी भी अवस्था में जो गृहस्थ है या त्यागी है वो आप स्थित रह करके कभी भी उनके विचारों से डिफरेंशिएट ना हो, विचारों को लेकर हम चलिए और भजन से कभी भी विचलित नहीं होंगे। ये इसी का नाम है व्यास पूजा। व्यास देखो विचारों से हम कभी भी एक भी इधर उधर सुखी नहीं होंगे, इसका नाम है जहां भी जिस रूप में रहेंगे भगवान का भजन करेंगे, दूसरों से भी भजन कराएंगे, इसका नाम है व्यास पूजा। गुरु पूजा किसको कहते हैं, और लोगों को भी गुरु के पास में लाएं और गुरु उनको भी गुरु बनाएं, गुरु जी का संदेश सबको यहाँ पहुंचाएंगे और सबको गुरु बनाएंगे भविष्य के लिए, इसका नाम है क्या संसार।